Under Kija, yeah, which are you worried about second or Kija? Prem, she goes, she gives a Chaitanya Pavanishan under, she do it to get out her, she vas any girl back to bring Kija. She, Radha Krishna Gopo Bina, Shaina Kunda, Radha, Kunda, Kitty Gopher Dhan, Kija. Vrindavan Dham Ki Jai, Mathura Dham Ki Jai, Navadvip Mayapur Dham Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Gangamai Jumuna Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai, Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai, Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Garanga. All glories to Srila Prabhupada Nama Om Shri Padaya. Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vinanda Swami Niti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharani Nivase Sisindivani Maskajade Satarani Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Samsajivam Sadvaitam Sadvadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Mavita Shri Vishakam
स्वागत है और आज बहुत विशेष दिन है आज श्री रामाचार्य का कृपा दिवस से बहुत विशेष होता है क्योंकि आज हमारे बहुत ही विशेष प्रसिद्ध है एसोसिएशन माता जी का हम इनसे धन्यवाद करते हैं कि माता जी यहाँ पे आई हैं अपना संग देने के लिए एक संक्षिप्त परिचय माता जी का और मास्टर्स इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और इसके बाद लगभग 30 साल का अनुभव है एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर और साथ ही साथ में कैसे स्कूल्स को मैनेज करना है इसका बहुत एक्सपीरियंस है और अपने अनुभव को उन्होंने परिणत किया बहुत सुंदर पुस्तक में जो कहते हैं बैकुंठ चिल्ड्रन और उसमें माता जी पूरा बता रहे हैं कैसे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं स्कूल्स को मैनेज कर सकते हैं इसके साथ साथ माता जी को रिक्वेस्ट प्रमोट करती है ये सिखाने के लिए कि कैसे हम पेरेंट्स को टीचर्स को बच्चों को किस प्रकार से बच्चों का देखभाल कर सकते हैं और साथ ही साथ तुम्हारा माता जी जीबी सिंह की जो शास्त्रीय एडवाइजरी काउंसिल होती है नेतृत्व करती है और बैक टू बैक मैगजीन इंटरनेशनल एडिशन के एसोसिएट एडिटर है और साथ ही साथ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एंड भक्तिविनाथ कॉलेज में और पूरे विश्व में भ्रमण करती है और साथ साथ बहुत सुंदर पुस्तकें लिखी हैं जैसे महा शिक्षा और ग्रेट मंत्रा बाय मिस्टिक मेडिटेशन अभी फिलहाल एक नया पुस्तक लिखा है एसेंस सीकर्स सो इतना सच
Today is 15th February 2019, and we're in Punjabi Bagh Temple, yeah?
15th February 2019,
and this is the disappearance day of Ramanuja Chai. So, of course, it's interesting that on our Gaudiya Vaishnava calendar, we are observing the disappearance day of the Acharya from a different
sampradaya.
So we may wonder why we do this.
So
we're going to speak just very little bit about Ramanujana.
ब्राह्मण जाति के विषय को संक्षिप्त में हम वर्णन करेंगे.
And then we're going to think about what is the relationship between different sampradayas and different religions.
और फिर हम इस बात पे विश्लेषण करेंगे कि अलग-अलग संप्रदाय और धर्म में क्या संबंध है.
So Ramanujacharya is particularly famous for his philosophy defeating Sankaracharya.
Ramanujacharya विशेष रूप से विख्यात हैं अपने सिद्धांत दर्शन के लिए जिसमें उन्होंने शंकराचार्य जी के सिद्धांत का खंडन किया है.
At Shankaracharya taught that everything is one without differentiation.
शंकराचार्य जी ने बताया था कि सब चीजें एक हैं बिना विशिष्टता के.
And that all ideas of individuality or separateness are completely false.
और जितने भी अलग-अलग विचार हैं अलग इंडिविजुअलिटी और अलग अलग व्यक्तित्व के वे सभी झूठे हैं.
He did not teach exactly that they are an illusion, but that they have no existence at all.
उन्होंने ये नहीं कहा कि वे भ्रम हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका तो अस्तित्व ही नहीं है.
So Ramanujacharya propounded the philosophy of Vishvadvaita, which is qualified oneness.
रामानुजाचार्य जी ने दर्शन प्रतिपादित किया विशिष्ट अद्वैत का, जिसका अर्थ है कि एकीकरण जो कि क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड विशिष्ट एकीकरण.
We have lots of English languages. One third English. So, if you want to know how to defeat an opponent, the good thing is to first find what you agree with.
अगर किसी प्रतिद्वंद्वी को आप हराना चाहते हैं तो पहले ये निकालना चाहिए कि हम उनमें और हमें क्या चीज एक है, एक समान है.
Just like we have personal experience, if someone comes to us and says, you are wrong, immediately we become defensive.
हमें ये व्यक्तिगत अनुभव भी है कि अगर कोई व्यक्ति आके हमें एकदम से बोले कि आप गलत हैं, तो हम बहुत ही उसी तुरंत हम उसके प्रति अपने बचाव करने लगते हैं.
And then we close our ears. We are not interested in what they have to say.
और हम अपना सुनना बंद कर देते हैं और उनको क्या कहना है इसमें हम रुचि नहीं रखते.
And we can fight for decades. You are wrong. You are wrong. You are wrong. You are wrong.
और हम फिर सदियों के लिए उनसे झगड़ सकते हैं कि आप गलत हैं.
So better if you want to convince somebody, you first find what they are right about.
तो सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि अगर हम किसी को किसी चीज में मनाना चाहते हैं तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि उनमें और हमें क्या चीज एक है और वो किस चीज में सही है.
If someone says to us, yes, you are correct, then immediately we relax.
अगर कोई हमें आके बोले तो बोलता है कि हाँ आप सही हैं तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं.
You are correct, and also you can consider this other point.
आप सही हैं और आप साथ साथ इस चीज का भी विचार कर सकते हैं.
So Ramanujacharya is preaching like this.
और रामानुजाचार्य इस तरह से प्रचार कर रहे हैं.
Yes, there is oneness.
कि हाँ एकीकरण है.
And consider this other point also.
परंतु साथ ही साथ इस बात पर भी आप सोचिए.
So he is teaching that the complete whole Ishvara is one.
वे कहते हैं कि जो परम सत्य है ईश्वर है वो एक ही है.
And that Ishvara has two energies, chit and achit.
और ईश्वर की दो शक्तियां हैं चित और अचित.
That means basically matter and the living entities.
जिसका अर्थ हुआ जीव और पदार्थ.
Always good to keep things in the same order. So if you say chit and achit, and then you're going to define it as the jiva and matter, that will confuse people. So when you say chit and achit, then you want to give the translation, and this is a little teaching thing, then you want to give the translation in the same order, then people will understand what translation goes with what word. Just for your own use for next time. That's the teaching hint, so people can understand. So Ramanujacharya described this relationship between Ishvara and his chit and achit potencies like the relationship between a blue lotus and its blueness.
रामाचार्य जी ने ईश्वर और उनकी चित और अचित शक्तियों के बीच में जो संबंध है उसका उसका जो समझाया उसको एक नीले कमल और उसकी नीलिमा से तुलना करके.
So he is describing that we living entities are a quality of God.
तो वो बता रहे हैं कि हम जीवात्मा भगवान के गुण हैं.
And he's saying there is oneness only in the sense of all of us together.
और कहते हैं कि एक एकीकरण है इस भाव में कि हम सब जो है साथ में हैं.
But otherwise, our differences as individual living beings are real and eternal.
परंतु जो विभिन्नता है हमारे अपने-अपने व्यक्तित्वों के रूप में वो हमेशा के लिए है, शाश्वत है.
Now we Gaudiyas accept his philosophy, and at the same time, we have a little bit different philosophy.
Gaudiya Vaishnav इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा कुछ विशेष भी है.
If you want to study this in more detail,
अगर आप इसके विषय में और विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं,
there is a book written by one of Srila Prabhupada's god brothers, OBL Kapoor.
प्रभुपाद जी के गुरु भाई ओबीएल कपूर जी ने एक इससे ग्रंथ लिखा है,
called Sri Chaitanya, his life and his life and philosophy.
जिसका नाम है श्री चैतन्य इज लाइफ एंड फिलॉसफी.
इफ यू रीड चैप्टर 11,
उसमें अगर आप 11वें अध्याय को पढ़ेंगे,
he is describing the different relationships between the Lord and the living entities taught by each of the sampradayas.
वो बताते हैं अलग-अलग संप्रदायों की जो शिक्षा है भगवान और उन जीवात्माओं के संबंध के विषय में.
To establish our Gaudiya philosophy of Achintya Bheda Bheda Tattva as being the most logical and comprehensive.
इस बात का स्थापना करने के लिए कि जो गौड़ीय सिद्धांत है अचिंत्य भेदा भेद तत्व का वो सबसे ज्यादा उन्नत है.
So we're not going to discuss that today. This is a very technical topic.
हम इस विषय में आज चर्चा नहीं करने वाले हैं, ये बहुत ही तकनीकी विषय है.
And I find when I discuss technical topics in a general class, half the people fall asleep.
मैं ये मेरे को पहले भी अनुभव रह चुका है कि अगर मैं एक जन सामान्य कक्षा में ये तकनीकी विषय चर्चा करती हूँ तो आधी से ज्यादा जो श्रोतागण है वो निद्रा के में चले जाते हैं.
I had that experience many years ago on Madhvacharya's disappearance day. I had prepared a very long technical class. On his philosophy. And after 10 minutes, everybody looked like they hadn't slept for about 2 weeks.
और 10 मिनट में ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारे श्रोता 2 हफ्तों से सोए नहीं हैं.
So, if you are interested in studying this further, I would refer you to OBL Kapoor's book.
अगर आप इस विषय में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो OBL Kapoor जी की पुस्तक पढ़ें.
So, we want to look briefly at Ramanujacharya's life.
उनके जीवन में संक्षिप्त हम बताएंगे.
So when he was young, he studied under a person named Yadava Prakash.
जब वे छोटे थे तो उन्होंने यादव प्रकाश नाम के व्यक्ति के अंदर जो शिक्षा ग्रहण की.
He was studying Sanskrit and Shastra.
संस्कृत और शास्त्र की शिक्षा.
But Yadava Prakash was a follower of Shankaracharya.
परंतु यादव प्रकाश शंकराचार्य जी के अनुयायी थे.
So the young Ramanujacharya, he would be arguing with his teacher.
तो जो युवा रामानुजाचार्य थे वे अपने शिक्षक से वाद विवाद करते थे.
He would be polite.
विनम्रता से करते थे.
He had proper etiquette, but his
शिष्टाचार का पालन करते हुए.
But his arguments were very strong.
परंतु जो उनके तर्क थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे.
And because his arguments were so strong,
परंतु क्योंकि उनके जो तर्क शक्तिशाली थे,
his teacher considered him a threat.
तो उनके शिक्षक ने उनको अपने प्रति एक खतरा समझा.
And this may seem unbelievable, but actually the teacher tried to kill her.
ये हो सकता है इस पे विश्वास ना करें, परंतु उनके ही शिक्षक ने उनका वध करने का प्रयास किया.
So generally we think of the relationship between teacher and student, or parent and child, as being the least envious of all possible relationships.
सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि जो शिक्षक और शिष्य या माता और पिता और बच्चों का संबंध होता है वो सबसे कम द्वेष युक्त होता है.
Usually parents and teachers are happy if their children or students do better than them.
सामान्यतया माता-पिता या शिक्षक बहुत खुश होते हैं अगर उनके जो शिष्य हैं या उनके जो खुद बच्चे हैं वो उनसे अच्छा करें.
So it's very surprising to have envy to the point of murder.
तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इतना द्वेष हो गया कि उनका वध करने का प्रयास किया.
But Ramanuja understood what was happening and he escaped.
परंतु रामानुज आचार्य जी समझ गए कि क्या हो रहा है तो वो भाग गए.
Later Ramanujacharya took initiation in the line coming from Yadavacharya.
बाद में रामानुजाचार्य जी ने दीक्षा ग्रहण की यमुनाचार्य जी के लाइन में.
And at that time, his former teacher, who tried to kill him, Yadava Prakash, became his disciple.
और फिर बाद में जो यादव प्रकाश जिन्होंने उनका वध करने का प्रयास किया था, वे उन्हीं के शिष्य बने.
So, a story like this tells us that the relationship between guru and disciple doesn't always fit in a little box.
तो ये जो कथा है, ये हमको सिखाती है कि शिष्य और गुरु का जो संबंध है वो एक बक्से में हम नहीं बंद कर सकते.
Just like Srila Prabhupada writes in the fourth canto of the Bhagavatam in relationship to Dhruva Maharaj.
जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज जी के संबंध में चौथे स्कंध में लिखते हैं.
That sometimes the disciple may take the guru back to God.
कभी कभी शिष्य भी गुरु को भगवत धाम ले जाते हैं.
And Srila Prabhupada writes about this in relation to himself.
और प्रभुपाद जी अपने ही संबंध में इसको लिखते हैं.
He says, we are hoping we can have a disciple who will carry us with him to Vaikuntha.
प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं इस चीज की आशा करता हूँ कि मेरा कोई शिष्य मुझे वैकुंठ ले जाए.
In this case, it actually happened.
और इस स्थिति में ऐसा हुआ.
The disciple became the guru of the guru.
कि शिष्य गुरु का गुरु बना.
And he became the guru of his former guru who had tried to kill him.
और वो ऐसे गुरु का गुरु बना जो उनको मारना चाहते थे.
This is the mercy and forgiveness of the great acharyas.
ये है महान आचार्यों की दया कृपा और उनका क्षमा भाव.
It is the ornament of the brahmanas.
ये ब्राह्मणों का आभूषण है.
And actually this is the ornament of anyone who wants to claim I am a follower of God.
वास्तविकता में ये उन सबों का आभूषण है जो इस बात की घोषणा करते हैं कि हम भगवान के अनुयायी हैं.
To be genuinely forgiving.
कि बहुत ही हृदय से क्षमा करने वाले.
So I want to ask, has anyone here had somebody try to murder you?
कोई आप में से ऐसा है जिसको किसी और ने वध करने का प्रयास किया हो? नहीं, आप बात करा कर सकते.
Not you, somebody back there. There was one person.
Ek hai.
Okay. And still, people are doing very, much less serious crimes against us.
हम देखते हैं कि जो अन्य लोग हैं बहुत ही कम दर्जे के अपराध हमारे तरफ करते हैं.
And still, we may not be forgiving them.
परंतु फिर भी हम उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं.
Maybe they did something against us 20 years ago.
हो सकता है 20 वर्ष पूर्व उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ किया हो.
And still we are angry.
और आज भी हम क्रोधित हैं.
We want them to suffer.
हम चाहते हैं कि वो कष्ट पाएं.
That is the opposite of forgiveness.
ये क्षमा का बिल्कुल उल्टा है.
That person hurt me.
कि उस व्यक्ति ने मुझे तकलीफ दी
उनको
कष्ट मिलना चाहिए.
When we take the mentality of wanting harm for those who harm us,
जब हम इस विचार को आत्मसात करते हैं कि जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया था उनको भी कष्ट मिलना चाहिए,
we entangle ourselves in the cycle of karma.
हम कर्म बंधन में फंसते हैं.
We find this happened with Amba and Bhishma.
हम देखते हैं ये भीष्म देव और अंबा के साथ होता है.
So Amba was not able to marry. And she put the responsibility for that situation on Bhishma.
और इस चीज की जो सारा दारोमदार है वो भीष्म देव के ऊपर लगा देती है.
She could have blamed Shalva also.
वो शाल को भी इसके प्रति जिम्मेदार ठहरा सकती थी.
But she loved him, so she didn't blame him.
पर शाल को क्योंकि वो प्रेम करती थी इसलिए उन्होंने उनको नहीं बोला.
So it wasn't just logical, it was emotional.
ये केवल संवेदना, ये तार्किक नहीं था, ये बस भावुक था.
And she dedicated 3 lifetimes to getting revenge against Bhishma.
और भीष्म देव से प्रतिशोध लेने के लिए 3 जन्म उन्होंने लगाए.
This jiva was on the planet when Krishna was on the planet.
ये जीव जब उस समय उपस्थित था जब कृष्ण भी इस धरती पे प्रकट थे.
And Bhishma is a Mahajan. By association with Mahajan, one can easily attain Krishna prema.
और भीष्म देव महाजन हैं और महाजन का संग करके किसी को भी बहुत ही सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है.
The opportunity was there to associate with the Supreme Lord Himself and His elevated devotees.
ये बहुत महान अवसर था उनके पास कि वो भगवान का साक्षात संग करें और उनके महान भक्तों का संग करें.
And attain Krishna prema.
और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें.
Get out of the material entanglement.
भौतिक बंधन से बाहर निकल पाए.
And instead this living entity decided, I'm going to hurt the person who hurt me.
परंतु ये सारे अवसर छोड़कर उन्होंने ये चीज का निर्णय किया कि मैं जिस व्यक्ति ने मुझे कष्ट पहुंचाया मैं उसको कष्ट पहुंचाऊंगा.
Yes, you all know this story.
क्या आप सभी इस कथा से अवगत होंगे.
So we should not be like this.
हमें इस प्रकार से नहीं होना चाहिए.
We should be forgiving.
हमें क्षमाशील होना चाहिए.
Forgiving doesn't mean that the other person didn't do anything wrong.
क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति ने कोई गलत चीज नहीं की.
It doesn't mean we have to live with that person.
ऐसा नहीं है कि हमें उन्हीं के साथ जीवन जीना है.
But it means we have no desire for them to suffer.
इसका अर्थ है कि हमारे दिल में उनके प्रति कोई प्रतिशोध की या उनको कष्ट मिले इस प्रकार की भावना नहीं है.
We don't do anything to hurt them.
हम ऐसा कुछ नहीं करते कि जिससे उनको कष्ट हो.
And we don't desire their suffering.
और हम इसकी इच्छा भी नहीं करते.
So we have these great acharyas who show us this kind of example.
और हमारे पास ऐसे महान आचार्यों का उदाहरण है जो ऐसा करते हैं.
If we can do this one thing,
अगर हम एक ये चीज कर पाए,
our spiritual advancement is very easy.
हमारा आध्यात्मिक उन्नति बहुत सरल हो जाएगी.
We know this is a part of the Trinadapi verse spoken by Sri Chaitanya
Mahaprabhu.
Which without doing that, to chant the pure name is practically
impossible.
A Ramanujacharya had mastered all of the Vedas by the time he was 16.
16 साल की उम्र तक रामानुजाचार्य जी ने सारे वेदों के ऊपर पारंगत हो गए.
He married when he was 17.
17 वर्ष की आयु में उन्होंने विवाह किया.
And when he was 30, he took sannyas.
और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सन्यास लिया.
And his wife was actually opposed to being respectful to saintly persons who were not of the Brahmin Varna.
उनकी जो भार्या थी वो इस विचार के खिलाफ थी कि जो लोग ब्राह्मण वर्ण में नहीं हैं ऐसे वैष्णवों को आदर दिया जाए.
She was very proud of her birth.
अपने जन्म की बहुत ही घमंड था.
And because of that, she was disrespectful to great Vaishnavas.
और इस घमंड की वजह से वो महान वैष्णवों के प्रति अपराध करती थी.
And for that reason, Ramanujacharya gave up her company.
और इस वजह से उन्होंने रामानुजाचार्य जी ने उनका त्याग किया.
So this is also a very important lesson.
यही बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है.
To give up pride.
कि घमंड छोड़ना.
Not to think I am better than other people.
ऐसा सोचना कि मैं दूसरों से महान हूँ.
We have so many reasons why we think we are better.
हमारे पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं.
Our nationality.
हमारा देश.
Maybe even what particular state or city we were born in.
हो सकता है. हो सकता है कि इस चीज का घमंड हो कि किस राज्य में किस शहर में हमारा जन्म हुआ है.
Our particular family,
हमारा जो कुल है.
Our gender,
हमारा लिंग.
Our intelligence,
हमारी बुद्धि.
Our education,
हमारी विद्या.
Our occupation,
हमारा कार्य.
Our physical appearance,
हमारे शरीर की सुंदरता.
How much money we have in the bank,
हमारे पास कितना लक्ष्मी है.
We can think of 100 reasons why we are better than somebody else.
हमारे पास 100 से भी अधिक कारण ढूंढ सकते हैं कि हम दूसरों से क्यों महान हैं.
Isn't that a fact?
क्या ये सत्य नहीं है?
Most of us have at least one or two things that we think, ah, in this way I am better.
कम से कम एक दो तो है ही.
Many of us may have 1,000 things that we think we are
better.
But as soon as we think like this, then we will not be able to recognize somebody who is superior to us in spiritual realization.
तो हम ऐसे व्यक्ति को नहीं पहचान पाएंगे जो आध्यात्मिक साक्षात्कार में हमसे उन्नत है.
Actually, this principle of humility is also essential for spiritual advance.
विनम्रता का सिद्धांत आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
We should see that we are very insignificant.
हमको ये समझना चाहिए कि हम बहुत ही तुच्छ हैं.
That any way in which we appear to be better is simply the Lord's grace upon us.
किसी भी जिस चीज से हम महान लगते हैं वो केवल भगवान की कृपा है हम पर.
It's not something I own.
ऐसा नहीं है कि वो मेरी अपनी चीज है.
All the things I am proud of, he can take away immediately.
जिन जिन चीजों पे मुझे गर्व है वो भगवान एक क्षण में वापस ले सकते हैं.
It's like if I am driving someone else's car and I am very proud of
it. ये उसी प्रकार है कि अगर हम किसी और की गाड़ी चला रहे हैं और उस बात पर हमको गर्व हो.
So whatever opulences we have, we should use in service, but we should not use them to become proud.
जो भी हमारे पास विभूतियां हैं उनको हमें भगवान की सेवा में जरूर प्रयोग करना चाहिए लेकिन अपने आप को गर्वित बनाने में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए.
Yes, we are very special and valuable. Krishna loves us.
या ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम बहुत ही विशेष हैं और मूल्यवान हैं. कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं.
But he loves the ants also.
परंतु कृष्ण चींटियों से भी प्रेम करते हैं.
Loves all living entities equally.
कृष्ण सभी जीवात्माओं से समान भाव से प्रेम करते
हैं. He is the friend of every living entity.
वे सभी जीवात्माओं के मित्र हैं.
He says, no one is my special friend and I don't envy anyone.
वे कहते हैं कोई मेरा विशेष मित्र नहीं है और मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता.
And we see that Ramanujacharya himself, he accepted disciples from any caste and any background and any situation.
हम देख सकते हैं कि रामानुजाचार्य जी भी किसी भी वर्ण से किसी भी जाति से किसी को भी अपना शिष्य स्वीकार कर लेते थे.
Actually, we see that all of the great teachers of spiritual life, they behave like this.
हम देखते हैं कि सारे आध्यात्मिक जीवन के महान आचार्य इस प्रकार से व्यवहार करते हैं.
I mean, Lord Ramachandra, even he accepted followers from among the animals.
भगवान रामचंद्र ने तो अनुयायी जानवरों से में से भी स्वीकार किए.
Even a vulture.
याद रखिए कि.
So we also should be Vijayavanaya Sampane Brahmani Gavyasi Sunichai Vasupaketa Pandita Samadarshina. We should not be seeing according to external distinctions in terms of offering respect to all living entities.
हमको बाह्य आवरण के अनुसार लोगों को मान सम्मान नहीं इस प्रकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए.
If we do not practice forgiveness and humility,
अगर हम क्षमाशील होना और विनम्र होना इसका अभ्यास नहीं करेंगे,
we can go on chanting Hare Krishna and worshipping the deity and taking prasadam for many many lifetimes.
हम हरिनाम का जप करना, प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के अर्चवैद्यों की पूजा करना जी अनंत जन्मों तक कर सकते हैं
and we will still remain in materialistic consciousness
परंतु हम फिर भी भौतिकता वाली चेतना में ही रहेंगे
because Vaikuntha is not like that
क्योंकि वैकुंठ इस प्रकार से नहीं है
we will not fit in there
हम वैकुंठ के जगत में नहीं जा रहे हैं
will not be able to live in that atmosphere
उस प्रकार के वातावरण में हम नहीं रह पाएंगे
so as I said in the beginning we may question why are we remembering the acharya from another sampradaya
मैंने प्रारंभ में बताया था कि ऐसा प्रश्न हो सकता है कि हम दूसरे संप्रदाय के आचार्य को क्यों याद कर रहे हैं
why do we have this day on our Gaudiya Vaishnava calendar
हमें अपने गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर में इस तिथि की क्या आवश्यकता है
So the first time I met personally with Srila Prabhupada, I was with my husband and my father.
जब मैं पहली बार श्री प्रभुपाद से भेंट किया कि तो मैं अपने पति और अपने पिताजी के साथ थी.
And my father said to Srila Prabhupada, "Is it all right if I visit the temple even though I have my own religion?"
तो मेरे पिताजी ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या ये ठीक होगा कि मैं आपके मंदिर आऊं परंतु मेरा अपना ही धर्म है
So at that time we were in the city of Chicago in America
उस समय हम शिकागो शहर में थे अमेरिका में
And Srila Prabhupada said yes just like there are many airplanes flying to Chicago
हाँ बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से बहुत सारे विमान शिकागो शहर में आते हैं
So there can be many religions
वैसे ही बहुत सारे धर्म हो सकते हैं
He said, but they have to know that they are flying to Chicago.
परंतु उनको जानना होगा कि उन्हें शिकागो ही जाना है.
Not just any airplane.
ऐसा नहीं कि कोई भी विमान.
He said, so religion means that you are trying to know God and to love God.
तो धर्म का अर्थ होता है भगवान के बारे में जानना जानते हैं जाने का प्रयास और भगवान को प्रेम करने का प्रयास
This mood of Srila Prabhupada was one of the main reasons that I decided to become his disciple.
Srila Prabhupada ji ka ye bhav ek mukhya karan hai ki maine ye nirnay kiya ki main Prabhupada ji ki shishya banungi.
Srila Prabhupada did not have the mood that we Hare Krishna devotees have a monopoly on truth.
Srila Prabhupada ji ka aisa bhav nahi tha ki hum jo Hare Krishna bhakt hain unka अधिकार है सत्य पे
He was not at all sectarian.
वो बिल्कुल भी गुणवादी नहीं थे
He would say, you can become Krishna conscious in your own religion.
श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आप अपने अपने धर्मों में भी कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं
But you have to be trying to know God and to love Him.
परंतु आपको एक चीज तक पालन करना है कि आप भगवान को जानने का प्रयास और भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें
He said that you can tell by the fruit, by the results.
और ऐसा आप कह सकते हैं उसके फल को देखकर
He said if you're reading Bhagavad Gita and you're not loving God, it is useless.
वो कहते थे कि अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं लेकिन भगवान से प्रेम नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल व्यर्थ है
And if you read the Bible and you love God, it is perfect.
और अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं और भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो ये अच्छी है
So I'd like us to think for a moment what the world would be like if Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement had taken over the whole world.
तो हम आपको एक निशान देते हैं कि आप इस विषय पर विचार कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है वो पूरे के पूरे जगत को आप्लावित कर दे।
If the world is too big, you can think about India.
और अगर जगत आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो भारत के लिए सोचिए।
And if that's too big, think about the Delhi area.
और अगर भारत भी बड़ा लग रहा है तो दिल्ली के विषय में सोचिए।
Suppose all of Delhi was fully in Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement.
ऐसा विचार कीजिए कि पूरा का पूरा दिल्ली प्रांत श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में है।
Would ISKCON be the only religious organization?
क्या ISKCON एकमात्र आध्यात्मिक संस्था होगी?
That we should consider this point very deeply.
हमें इसको बहुत ही गहराई से विचार करना चाहिए।
Do we want to become the official government religion?
क्या हम सरकारी धर्म बनना चाहते हैं?
Just like in the Middle Ages in Europe, the Roman Catholic Church was the official religion.
जिस प्रकार से मध्यवर्ती समय में जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो सरकारी धर्म था.
And they used to torture anybody who had a different religion.
और वो उन सभी लोगों को पीड़ित करते थे जो दूसरे धर्मों से थे.
You studied this in school?
क्या आपने इसको अपने स्कूल में पढ़ा?
Today they talk about the Muslim terrorists.
आज वो इस्लामी आतंकवादियों के विषय में बात करते हैं.
But there used to be Catholic terrorists.
पर कैथोलिक आतंकवादी भी होते थे.
Actually.
वास्तविकता में.
I don't know if they teach you this in the schools.
मैं ये नहीं जानते कि अगर वो आपको विद्यालयों में शिक्षा देते हैं.
So anyone who had a different religion, they would capture them, put them in prison, and torture them.
अगर किसी और का कोई और धर्म है तो उनको पकड़ कर जेल में डाल के उनको खूब प्रताड़ना दी जाती थी.
Because that is the only way to force everybody to have exactly the same religion.
क्योंकि वही एकमात्र उनका तरीका था कि सभी को ये जबरदस्ती एक वही धर्म स्वीकार करने में बाध्य करने का.
So would we want to do that?
क्या हम ऐसा करना चाहते हैं?
So what is our idea?
तो हमारा क्या विचार है?
If we were going to transform the world,
अगर हमें पूरे जगत को परिवर्तित करना है,
what would it look like in terms of religion?
तो वो धर्म के अनुसार क्या लगेगा?
So of course we have our four Vaishnava sampradayas.
निश्चित रूप से हमारे पास चार वैष्णव संप्रदाय हैं.
Then we have the religions that are outside of the Vedic tradition.
और फिर हमारे पास बहुत सारे अलग धर्म हैं जो वैदिक सभ्यता से अलग हैं.
What would we want the people in those religions to do?
हम उन धर्म के लोगों के लिए क्या सोचते हैं?
Is when we left this temple this morning.
अगर हम सुबह इस मंदिर से बाहर जाएं.
And you went out into Delhi.
और दिल्ली में प्रवेश करें.
The greater area.
जो बड़ा वहाँ का जगह है.
And everything was in Mahaprabhu's movement.
और सब चीजें महाप्रभु के आंदोलन के अनुसार हो रही हैं.
What would you see people doing?
तो आप लोगों को क्या करते देखेंगे?
Would all the churches and mosques and other temples be closed?
क्या बिल्कुल जितने भी गिरजाघर हैं, मस्जिद हैं, सब बंद हो जाएंगे?
This we should consider.
हमें इस विचार में विचार करना चाहिए.
Because when we know what is our goal.
क्योंकि अगर हमें पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है.
Then we can present Krishna consciousness properly.
तो हम कृष्ण भावनामृत को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं.
In all the genuine religions of the world, at least originally, there was the concept of love of God.
जितने भी धर्म हैं पूरे विश्व के उनमें भगवान के प्रेम का विचार रहता था.
In time it becomes covered.
और समय के साथ ये विचार जो है लुप्त हो गया.
धर्म becomes अधर्म.
धर्म जो है अधर्म बन गया.
That can happen to us also.
वो भी हमारे साथ भी हो सकता है.
We Gaudiya Vaishnavas are not immune from this tendency.
हम Gaudiya Vaishnava इस से बचे नहीं हैं.
It happened in the time of Bhaktivinoda.
Bhaktivinoda Thakur ji के समय भी ऐसा हुआ.
That he had to revive the real understanding of Gaudiya Vaishnava practice and philosophy.
उनको Gaudiya Vaishnava जो आचार और व्यवहार है और सिद्धांत है उसको पुनर्स्थापित करना पड़ा.
So our goal is not to argue with the Sri Vaishnavas as to whether Achintya-Bheda-Bheda or Vishwadvaita is the better philosophy.
हमारा लक्ष्य Sri Vaishnavas से ये तर्क-वितर्क करना नहीं है कि Achintya-Bheda-Bheda या Vishishtadvait में से कौन सा सिद्धांत बड़ा है.
That is not our business.
ये हमारा कार्य नहीं है.
Our business is to help them find Krishna Bhakti.
हमारा कार्य है उनकी ये सहायता करना कि वो कृष्ण भक्ति में प्रगति कर पाए.
To follow their acharya in forgiveness and humility.
कि अपने आचार्य का वो अनुसरण कर पाए क्षमाशील होने में और विनम्र होने में.
And that is our business when we deal with anyone in any religion.
और वही हमारा कार्य है जब हम किसी से भी मिलते हैं किसी और धर्म से.
Where is bhakti in your tradition?
हमारे कि उनसे ये देखना कि उनके जो धर्म है उस धर्म भक्ति कहाँ है.
Find where is there is love of God.
ये ढूंढिए कि वहाँ पर भगवत प्रेम कहाँ है.
and come to forgiveness and humility.
और क्षमाशीलता और विनम्रता तक आइए.
Come to mercy.
दया तक आइए.
That is our business.
ये हमारा कार्य है.
Of course, if somebody says, well, you go to your Vaishnavas, you have the most complete understanding of God, I want to join you, we will not refuse.
अगर कोई ऐसा कहता है कि आप गौड़ीय वैष्णव आपके पास भगवान की संपूर्ण पूर्ण समझ है तो मैं आपको ज्वाइन आपको जुड़ना चाहता हूँ तो हम उनको मना नहीं करेंगे.
If you really want to know God, you can know God the best here.
अगर आप वास्तविकता में भगवान को जानना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर जान पाएंगे.
I don't think anyone else has as much knowledge of God.
मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी और को इतना भगवान के विषय में ज्ञान है.
And if you want to love God, we also have the most comprehensive understanding of what does that mean and how to do it.
और अगर आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भी हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छी समझ है इस विषय में.
Especially in the works of Srila Rupa Goswami, like Bhakti Rasamrita Sindhu.
विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी जी के जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है उसमें.
But if people are attached to their own tradition, that is not a problem.
परंतु अगर लोग अपने अपने धर्मों से आसक्त हैं तो वो हमारी कोई समस्या नहीं है.
Our idea is not to tell everyone that they are wrong.
हमारा जो कार्य है ये नहीं है कि दूसरों को ये बताते रहना कि आप गलत हैं.
We can say if you want more complete knowledge and a more complete process, we are offering it.
हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको और पूर्ण ज्ञान और पूर्ण प्रक्रिया भगवान से प्रेम करने की चाहिए तो ये हम दे रहे हैं.
But love for God is also in your tradition.
परंतु भगवत प्रेम आपके धर्म में भी है.
Practice it like that.
और अपनी संस्कृति के अनुसार भी आप उसका अभ्यास कर सकते हैं.
And we should be falling in love with Krishna.
और हमें भी भगवान कृष्ण के प्रेम से आप्लावित होना चाहिए.
Not just intellectually becoming proud that we have a more complete philosophy.
केवल ये नहीं कि बुद्धि के स्तर पर हम गर्वित होते रहें कि हमारा सिद्धांत सबसे पूर्ण है.
Then it becomes another source of pride like family or education.
तो वो फिर एक और हमारा कारण होगा गर्व का जिस प्रकार से हमारी विद्या हमारा कुल.
That we think we are better than everyone else because
हम दूसरों से अच्छे हैं.
Our religion is better.
क्योंकि हमारा धर्म सबसे अच्छा है.
And then we have lost the whole point.
तो हम जो मुख्य चीज है उसे चूक हो गए.
Then we're not really practicing our religion at all.
तो हम अपने धर्म का वास्तविक अनुशीलन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं.
So questions, comments?
तो किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है?
That's going to be hard because you're going to have to also translate.
हरे विष्णु महादेव, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही अच्छा बहुत एक लेक्चर का जो मतलब थोड़ा सा लेक्चर स्मॉल में डिफरेंट एक लेक्चर सुनने को मिला आज. और मेरा प्रश्न ये है कि जो जैसे आपने कहा कि भी कोई किसी भी धर्म को फॉलो कर रहा है या कोई बाइबल भी पढ़ रहा है लेकिन वो भगवान से प्रेम करता है तो लाइक इसको बड़ा समझना मुश्किल है कि वो मतलब है कि वो भगवान से प्रेम करने का एक्चुअल मीनिंग क्या है. क्या मतलब है भगवान से प्रेम करना या कैसे हम समझ पाएंगे हम भगवान से प्रेम करते हैं.
Did you get all of that?
He is thanking you for this wonderful class. It was a little different from the regular classes.
It's supposed to be different. It's a special day.
And he is asking that as you told in Hindi.
Yeah, but just because it's also recorded. And some people listening to the recording may not know Hindi. It's better if you say the English also to the mic.
So, who is asking that as you told in the lecture, that if somebody from other religion is loving God, that is okay. So
it is not okay. It is
fantastic. So, how can we understand that somebody else is loving God, or we ourselves are loving God? What are the practical measures?
Oh, that is a wonderful question.
ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा.
And you are not the first person to ask this question.
और आप इस प्रश्न को पूछने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं.
Therefore, you will find the answers in the shastra.
तो आपको इसका उत्तर शास्त्र में प्राप्त होगा.
Arjuna also asked this question.
अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा था.
What are the symptoms of perfection?
कि सिद्धि के क्या लक्षण हैं?
How does such a person behave?
इस प्रकार का व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है?
So anyone know where in the Bhagavad Gita Arjuna asks this question of the symptoms?
किसी को ये प्रश्न पता है कि भगवद गीता में अर्जुन ने ये प्रश्न कहाँ पूछा है?
I was going to just say end of second chapter, but you knew exactly this sloka. So 2.54 in the Bhagavad Gita. Arjuna is asking and Krishna is describing what are the symptoms.
तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं और कृष्ण इसका उत्तर देते हैं.
Where else?
और कहाँ?
End of 14th chapter.
End of 14th. Okay. Yes.
14वें अध्याय के आखिर में.
So where are some other places in the scriptures where we have this description?
और शास्त्रों में और कहाँ कहाँ पे ये विसंवाद प्राप्त होता है?
Yes.
Bhagavatam third canto, Devuti Mata.
Yes, when Lord Kapilade is giving the qualities of a devotee.
Bhagavatam ke tisre skand mein jahan pe Devuti Mata ji aur Kapil Dev ji ka samvad hota hai, jahan pe Kapil Dev ji ek ek bhakt ke gun batate hain.
Other places.
Aur kaun si sthan hai?
Yes, also the 12 these are devotee also in the 11th canto in the Uddhava Gita. Another place. I'm giving you lots of homework to do.
Amrish
Maharaj, yes. Are you taking some notes? You're going to have, because it's already 8:58, so you will need to go to the Shastra and find this. You can understand my English? Yeah, so you should note this. Other places.
Prahlad Maharaj tells.
Oh, yes.
Prahlad Maharaj chalate hain.
What about Sri Chaitanya Mahaprabhu? Where does he describe this?
Sri Chaitanya Mahaprabhu ne iska varnan kahan kiya hai?
To Ramananda Rai, yes, okay.
Ramananda Rai ji ko.
But there's a little bit better. That's a good place, but there's a little better place.
उससे भी अच्छी जगह है.
सनातन गोस्वामी.
With Sanatan Goswami.
सनातन गोस्वामी जी के.
So Mahaprabhu gives 9 symptoms of someone who's attained bhava.
महाप्रभु ने 9 लक्षण बताए हैं जिन्होंने भाव प्राप्त किया है.
And then there is Vishnu Chakravarti Thakur's Madhurya Kadambini.
Aur Vishnu Chakravarti Thakur ji ne Madhurya Kadambini mein iske bare mein bataya hai.
There's descriptions there for each of the stages of advancing in love of God. What are the symptoms?
Aur Krishna prem mein unnat hote hue har sthiti ka stay ka bahut acche se vivaran hai.
Chila Prabhupada never gave a
book. So there's so many, but these are some of the concentrated places.
बहुत सारे स्थान हैं गोपाल जी के ग्रंथों में, लेकिन हमने जिनका वर्णन किया वो मुख्य विशेष कॉन्सेंट्रेटेड स्थान है.
कॉन्सेंट्रेटेड स्थान है. So you also there's a nice list that I like in the 12th chapter of Bhagavad Gita verses 13 through 20.
तो मैं विशेष रूप से भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13वें से 20वें श्लोक में जो वर्णन है उसको प्राथमिकता देती हूँ.
So this kind of question is answered throughout the scripture.
इस प्रकार का प्रश्न शास्त्रों में बार-बार उत्तर दिया जा रहा है.
What are the evidences?
तो इनका क्या प्रमाण है?
How do you know that you are making progress in love of God?
कि आप कैसे पता चलेगा कि आप भगवान के प्रेम के प्रति अग्रसर हो रहे हैं?
And how can you recognize it in somebody else?
और दूसरों के अंदर भी आप कैसे ये पहचान पाएंगे?
Of course, there's a little bit of a funny thing in terms of yourself advancing in love of God.
ये थोड़ा सा हास्यप्रद है जब हम अपने विषय में पूछते हैं.
Which is a little difficult.
क्योंकि ये थोड़ा कठिन है.
Because as you advance in love of God, you also advance in humility.
क्योंकि आप जैसे-जैसे भगवत प्रेम में प्रगति करते हैं और साथ-साथ विनम्रता में भी प्रगति करते हैं.
And love of God is unlimited.
और भगवत प्रेम असीमित है.
You can always love God more.
आप हमेशा भगवान से और प्रेम कर सकते हैं.
So when people are in love of God, they usually think they don't love God enough.
तो जब लोग भगवत प्रेम में होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो पर्याप्त मात्रा में भगवत प्रेम में नहीं है. ये भी बात है.
So thank you very much.
आप सबका बहुत धन्यवाद.
I'm going to tell you.